एक अकबर के जमाने में उपनिषद लिखा गया, उसका नाम अल्लाहोपनिषद है। तो ऐसे कई उपनिषद हैं, पर 108 उपनिषद ऐसे हैं जो माने जाते हैं महत्वपूर्ण। और ऐसे 108 उपनिषदों में शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं, जैसे ईश केन कठ प्रश्न, यह तरीका है, यह क्रम है हम लोगों का। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरीय तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। इसी क्रम से पहले ईशावास्योपनिषद पर लिखा, फिर केनोपनिषद पर लिखा, फिर कठोपनिषद पर लिखा। इस ढंग से क्रम आपके समक्ष रखा गया। कुछ कहते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिषद पर भी उन्होंने भाष्य लिखा है, पर कुछ कहते हैं कि श्वेताश्वतर उपनिषद का भाष्य आद्य शंकराचार्य द्वारा लिखा गया नहीं है, भले ही बाद के शंकराचार्य ने लिखा हो। यह जानकारी आपके लिए ऐसे ये। अब जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद के 2 ऐसे भाग किए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, फिर उसी प्रकार सामवेद अथर्ववेद। तो इन जो शाखाएं हैं, 108 उपनिषदों की बात मैंने कही, तो उसका विभाजन ऐसा हुआ है, ऋग्वेद के अंतर्गत 10 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत 19 और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 33, सामवेद के अंतर्गत 16 और अथर्ववेद के अंतर्गत 30। ऐसे इस प्रकार से यह विभाजन हुआ, सब मिलाकर के 108 उपनिषद यह कहा जाता है। तो यह जो हमें ईशावास्योपनिषद प्राप्त होता है, यह शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में, उसको शुक्ल यजु संहिता भी कहते हैं, इसको वाजसनेय भी संहिता भी कहते हैं। तो यह 40वां अध्याय, इसका मतलब क्या हुआ, पहले के जो 39 अध्याय हैं वे कर्म कांडात्मक हैं, 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद मिलता है। तो यहां पर वेदांत शब्द के जो 2 अर्थ हैं, दोनों के दोनों लग जाते हैं, दोनों के दोनों उपयोगी होते हैं। वेदांत को ले वेद का अंतिम भाग, तो यह 40वां अध्याय और अंतिम अध्याय होने के कारण उस अर्थ की भी पुष्टि करता है, और ज्ञान की पराकाष्ठा के रूप में इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई गई है। तो दोनों ही दृष्टियों से ईशावास्योपनिषद बड़ा ही अद्भुत ऐसा उपनिषद है। 18 मंत्र हैं, और इन 18 मंत्रों के भीतर में कितना सारा ज्ञान उड़ेल दिया गया है, जीवन दर्शन का कितना सुंदर चित्रण किया गया है, यह देखते ही बनता है। जैसे एक सुंदर बात कही गई है ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा, एक भिन्न प्रसंग में वह बात कही गई है, आंगे साने परिणामे थोर जैसे गुरुमुखी चे अक्षर। आंगे साने माने जिसका अंग कलेवर छोटा हो परंतु परिणाम में बहुत थोर हो, बहुत महान हो, जैसे गुरुमुखी से अक्षर, गुरुमुख का जो अक्षर होता है, गुरुमुख से जो मंत्र हमें मिलता है बहुत छोटा, पर उसका परिणाम कितना बड़ा होता है, तो उसको हम यहां पर लागू कर सकते हैं। ईशावास्योपनिषद ऐसा ही है, इसका कलेवर बहुत छोटा है पर इसका परिणाम कितना महान है, मानो कितनी हमारे सामने में जानकारी रखता है, अनुभूति मानो कितनी घनीभूति अनुभूति हमारे सामने रखता है, ऐसा ईशावास्योपनिषद है। 18 मंत्रों का यह मानो भौतिक दृष्टि से हमने विचार किया ईशावास्योपनिषद पर, और यह क्या है, क्या कहता है, तो इसके जो प्रथम 3 मंत्र हैं उन पर एक सामान्य रूप से उनका अर्थ आपके सामने रख दें, और आप देखेंगे कि कैसा अद्भुत जीवन दर्शन इन 3 मंत्रों में ही प्रदर्शित कर दिया गया है। पहले तो शांति पाठ आता है, आप देखेंगे जितने भी ऐसे हमारे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, प्रथम मंगल या जो मांगलिक शांति पाठ, और उसके पश्चात जो भी विवरण हो वह दिया गया शिष्य और गुरु के वार्तालाप के रूप में, और अंत में फिर से शांति पाठ। तो प्रथम जो शांति पाठ होता है या अपनी मनोभूमि को ठीक ठीक जो उपदेश दिया जाने वाला है उसके अनुकूल बनाने के लिए, और अंत में जो शांति पाठ दिया गया है, समाधान हो गया, मन समाहित हो गया, जो हमारे भीतर में संशय थे विच्छिन्न हो गए, गुरुजी ने दया करके सारा हमारा प्रश्न हल कर दिया, तो वहां पर एक कृतज्ञता का भाव, और शांति पाठ में अनुभूति भी वहां समाहित। तो यहां पर भी जो शांति पाठ हमारे समक्ष आता है वह भी एक बड़ा सुंदर शांति पाठ है। आप जानते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ही शांति ही शांति। यह विकास का सूत्र है। जैसे पूर्णमदः, अदः माने वह, वह पूर्ण है। पूर्णमिदं, इदं माने यह, यह पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकला है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, अच्छा पूर्ण से अगर पूर्ण निकला है तो कितना बचा रहा, तो कहते हैं पूर्ण से पूर्ण के निकलने पर पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बच रहता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, त्रितापों की शांति हो, यह शांति पाठ है। यह जो शांति पाठ है पूरे ईशावास्योपनिषद में जो कहा गया है उसका अर्क, उसका सार प्रस्तुत करता है। मानो यह संबंध बताता है वह पूर्णम अदह, अदह माने वह, वह माने आप परमात्मा कह लीजिए, आप उसे ब्रह्म कह लीजिए, इदम कहने का मतलब यह जगत, जगत हमारे करीब लगता है। वैसे तो परमात्मा हमारे सबसे करीब है, पर चूंकि वह दिखता नहीं है इसीलिए हम कहते हैं वह, हमसे मानो दूर है। जो दूर है उसके लिए कहते हैं वह, जो करीब है जो नजदीक है उसके लिए कहते हैं यह। तो यहां पर कहा गया यह जो जगत है यह भी पूर्ण, वह परमात्मा पूर्ण, यह जगत पूर्ण, और यह जो जगत पूर्ण है कहां से निकला है, कहते हैं वो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से यह पूर्ण निकला है, उस ब्रह्म रूपी पूर्ण से यह जगत रूपी पूर्ण निकला है। अच्छा जगत रूपी पूर्ण उस ब्रह्म रूपी पूर्ण से निकला तो बचा क्या है, तो कहते पूर्ण ही बचा है। अब यह बड़ी फैलेसी मालूम पड़ती है, पर आप में से जो लोग गणित के विद्यार्थी रहे हैं, आप यदि इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में क्या है यह जानते हैं तो आप इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट, इन्फिनिट से इन्फिनिट घटा, इन्फिनिट बाकी रहा, इन्फिनिट में इन्फिनिट जोड़ा, इन्फिनिट बाकी रहा, यह जो गणित का कॉन्सेप्ट, ठीक मानो यह अनंत का कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया है, यह पूर्ण। और एक दूसरी बात यहां पर है, इसके माध्यम से ये जो आप पढ़ते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, अद्वैत वेदांत में भी जो दर्शन पढ़ते हैं, आप कभी विवर्तवाद पढ़ते हैं, कभी वेदांत में परिणामवाद पढ़ते हैं, तो विवर्तवाद की पुष्टि इसके माध्यम से हो रही है, ऐसा कहा गया है। विवर्तवाद का मतलब कि जैसे अपन समझते हैं यह संसार है, अच्छा ठीक है, कहां से निकला, उस सत्य से, उस ब्रह्म से निकला है। तो कैसे निकला ब्रह्म से यह संसार, कैसे निकला, तो एक उदाहरण है जिसको कहते हैं परिणामवाद। परिणामवाद का क्या मतलब है, जैसे दूध है, दूध दही बन गया, दूध का परिणाम, दूध का परिवर्तन दही के रूप में हो गया, तो दूध के जो गुण हैं अब दही में जो गुण आए दोनों गुण भिन्न हो गए, दूध में खटास नहीं है, दही में खटास है, तो दूध के जो गुण हैं वे सारे परिवर्तित हो गए दही बन करके। तो इसी प्रकार उस ब्रह्म से यह संसार निकला है, तो संसार के जो गुण हैं वे गुण परिवर्तित हो गए, ब्रह्म के गुण संसार के गुण में नहीं है, इसको कहते हैं परिणामवाद। यह भी वेदांत का एक पक्ष है, दर्शन पक्ष। विवर्तवाद जो है यह शंकराचार्य ने हमारे समक्ष रखा, शंकराचार्य ने इस पर जोर दिया, शंकराचार्य की यह खोज नहीं है, भगवान शंकराचार्य जो था उसी को हमारे समक्ष अपनी भाषा में, प्रोज्वल भाषा में व्यक्त करते हैं। विवर्तवाद का मतलब क्या है, जैसे सांप, एक रस्सी पड़ी है उसमें मुझे सांप दिखाई देता है, इसको कहते हैं विवर्त। रज्जु पर यानी रस्सी पर यह जो सर्प दिखाई देता है कैसे दिखाई देता है, विवर्त के कारण, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। तो मैं सर्प देखता हूं, रस्सी नहीं दिखाई देती, वह विवर्तवाद है। तो यहां पर मानो विवर्तवाद का पोषण हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि ब्रह्म से यह संसार निकला है, जगत निकला है, किस प्रकार से निकला है, जैसे रस्सी से सांप निकला है। अब रस्सी से सांप कैसे निकला, वह तो भ्रम के कारण निकला, वह हर अवस्था में रस्सी ही है पर मुझे सांप के रूप में वह दिखाई देती है, और इसके कारण क्या होता है, मैं डर के मारे चीखता हूँ, भागता हूँ, रोशनी लाने के लिए कहता हूँ, और कितने प्रकार की प्रतिक्रियाएं मेरे मानस पर होती हैं। तो यहाँ यह बताया गया कि यह जो जगत है वह ब्रह्म का विवर्त है। तो यदि ब्रह्म जैसे रस्सी से तुलना करें, रस्सी अगर 6 फुट की है तो सांप कितने फुट का है? 6 फुट का है। अच्छा, यह सांप किसमें से निकला है? रस्सी से निकला है। 6 फुट की रस्सी से 6 फुट का सांप निकला है। अच्छा, जब रस्सी से सांप निकला है तो बचा क्या है? बचा भी 6 फुट ही बचा है। तो यह जो कहा जाता है, यदि आप पूर्ण की दृष्टि से देखें तो पूर्ण रूप रज्जु से, पूर्ण रूप रस्सी से यह जो सांप निकला है वह भी पूर्ण रूप है। तो निकला है तो पूर्ण से पूर्ण निकला, तो बचा है वह भी पूर्ण ही है। यह विवर्तवाद है। तो मैं जगत देखता हूं, कैसे देखता हूं? अज्ञान के कारण, मोह के कारण। सांप कैसे देखते हो? अज्ञान के कारण। यदि अज्ञान हट जाए तो वह तो रस्सी ही है, वहां पर सांप है ही नहीं, वह रस्सी है जिसको तुम सांप के रूप में देखते हो। तो जिस समय यह सांप निकल जाएगा, जिस समय रस्सी प्रतिभात होगी, देखोगे वह रस्सी ही है, हर समय वह रस्सी ही थी, तुम्हें थोड़ी देर के लिए वह सांप के रूप में दिखाई दे रही थी अज्ञान की दशा में। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर शांति पाठ में कहा गया कि यह जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से यह जगत निकला है। ब्रह्म पूर्ण जगत पूर्ण, ब्रह्म पूर्ण से जगत पूर्ण निकला है, जो बचा हुआ है वह भी पूर्ण ही है, ऐसा यहां पर ज्ञान दिया गया। उदंच पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, उदंच उद माने बाहर निकलना, यह जो बाहर उद, अंच माने निकल जाना, बाहर निकल, उदंच का मतलब बाहर निकलना, इसको कहते हैं विकास का सूत्र, माने हमारे यहां इसको विकास माना है, ऐसा विकास। स्वामी जी कहते हैं ना, विवेकानंद जी कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, डू दिस आइदर बाय नॉलेज और बाय वर्क और बाय डिवोशन और बाय साइकिक कंट्रोल, बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दीज एंड बी फ्री। दिस द होल ऑफ रिलीजन, टेम्पल्स चर्चेस बुक्स दे आर बट सेकेंडरी डिटेल्स। अद्भुत वाणी है यह कि प्रत्येक जीवात्मा अव्यक्त ब्रह्म है, हमारे भीतर में ब्रह्म भाव अव्यक्त है, पोटेंशियल है, इसको काइनेटिक बनाना है। तो यह जो ब्रह्म भाव है यह कहीं से आएगा नहीं, यहीं से विकसित होता है मेरे भीतर से, यह पूर्णता मेरे भीतर में छिपी है, उस छिपी हुई पूर्णता को मुझे प्रकट कर देना है, यह इसका सूत्र पहला। तो यह उदंच मानो विकास का सूत्र है। और पहले मंत्र में यहां पर ऋषि उपदेश देते हैं, ऐसा दिखाई देता है कि पहले तो शिष्य कहीं दिख नहीं रहा है, परंतु हम देखेंगे शिष्य बैठा है, गुरुजी उपदेश प्रदान करते हैं, और 18 मंत्रों में शिष्य को उपदेश भी दिया गया, शिष्य ने साधना भी की और शिष्य उस साधना में सिद्ध भी हो गया, यह सारी प्रक्रिया दिखाई देती है। तो पहला मंत्र, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां वृधः कस्य सिद्धनम्। अद्भुत उपदेश है, इसका अर्थ यह है, ओम ओम यह मंगलवाचक, ईश्वर का नाम, तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर का यदि सबसे समर्थ नाम कुछ हो सकता है वह ओम है, ऐसा यह ओम शब्द जिसको हम प्रणव भी कहते हैं। पातंजल योग सूत्र में जो सूत्र लिखा है वही मैंने आपके समक्ष कहा, तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का वाचक, उसका नाम क्या है? प्रणव है या ओम है। जैसे हम नाम देते हैं तो भगवान के कितने नाम हैं, पर सबसे सटीक नाम है यह ओम। अब ओम इसके दर्शन में, गूढ़ दर्शन में जाने का प्रयोजन नहीं, क्योंकि यही कई प्रवचन की अपेक्षा रखता है, ओम पर यदि विस्तार से चिंतन करें तो ठीक। तो यह ओम शब्द, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम, ईशावास्यम यदि हम इसको एक प्रकार से लें, ईशावास्यम अलग अलग शब्द के रूप में, तो यह तृतीय विभक्ति कहते हैं, ईश के द्वारा भरा हुआ है, आच्छादित है। और यदि एक शब्द लें तो कहेंगे ईश का आवास स्थान, भगवान का बैठक खाना, ऐसे दो अर्थ ध्वनित होते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह जो दिखाई देता है सब या तो भगवान का बैठक खाना है एक अर्थ, या सबको तुम भगवान से आच्छादित कर लो, ईश्वर से ढक लो। यत्किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है, इस गतिशील संसार में जो कुछ भी है, इस क्षरणशील संसार में जो कुछ भी है, संसार माने जो सरकता है, सरकने वाला संसार, जगत माने जो गतिशील है, संसरणशील वह संसार, गतिशील वह जगत, तो इसके भीतर में जो कुछ भी है उसको तुम ईश्वर से ढांक लो एक, या इसको तुम ईश्वर का बैठक खाना देखो दो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तुम इस त्याग के द्वारा भोग करो, माग्रदह लालच मत करो, कष्ट शुद्धनम, भला धन किसका है। यह सूत्र है और इस सूत्र में कितने उपदेश दे दिए गए। ऐसा लगता है ईशावास्योपनिषद में मानो लोभ वृत्ति पर प्रहार किया गया है। एक एक उपनिषद में एक एक वृत्ति पर प्रहार है, एक एक पर जोर दिया गया है, तो यहां पर लोभ वृत्ति को नष्ट करने पर जोर दिया गया है। मनुष्य लोभ के कारण कितने पाप नहीं करता है। तो कहते हैं अरे जीवन में धन भला किसका है, तुम कितना धन इकट्ठा करना चाहते हो, तुम्हारे साथ कितना धन जाएगा। जैसे हम सामान्य बातचीत में कहते हैं, टॉलस्टॉय की कहानी आप पढ़ते हैं, हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर, मनुष्य कितनी जमीन चाहता है। बड़ी सुंदर कहानी, पहली बार जब मैंने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी वह कहानी। आप जानते हैं एक मनुष्य एक ऐसे राजा के राज्य में चला गया जहां पर जमीन मुफ्त में मिलती थी, खरीदना नहीं पड़ता था। तो वहां जाकर के उसने पूछा राजा के कर्मचारी से, कितनी जमीन मुझे यहां पर मुफ्त मिल सकती है। तो कर्मचारी ने कहा कि देखो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक तुम जितनी जमीन को घेर ले सको, कुल्हाड़ी से तुम निशान बनाते चलो और जितनी जमीन तुम्हारे द्वारा घेर ली जाएगी उतनी जमीन तुम्हारी है। बड़ा हर्षित हुआ, वाह इतनी जमीन मेरी है। तो ठीक है, वह देखता रहा और उसके बाद उसने सबसे उपजाऊ भूमिखंड देखा। सुबह सूर्योदय से कुल्हाड़ी देकर के शुरू करता है घेरना और जैसे जैसे जाता है अधिकाधिक उपजाऊ जमीन दिखाई देती है, सोचता है थोड़ा सा इसे भी घेर लू ना। और जब कहा गया अरे भले मानस थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा कुछ खा ले, नहीं नहीं खाने में भी तो 5-6 मिनट जाया हो जाएगा, उतनी जमीन फिर घेर नहीं पाऊंगा। और इसलिए वह खोदता जाता है। सूर्य डूबने लगा, भागने लगा बेतहाशा, जोरों से करने लगा कि ताकि वह कम से कम घेर रहा है वह पूरा तो हो जाए। कहानी कहती है सूर्यास्त हुआ, अभी वह थोड़ी ही दूर पर बाकी था ताकि वह घेर लेता, और आया और अचानक बेदम होकर के गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। और जब उसको दफनाया गया टॉलस्टॉय कहते हैं बस इतनी ही जमीन की आवश्यकता उसे थी, वह तो सारा दिन परिश्रम करता रहा। यही कथा है कि हमें कितनी जमीन जरूरी है, हम कितना चाहते हैं, मनुष्य के भीतर में लालच कितना है, लोभ कितना है। मां गृधा है एक बार कह दिया लालच मत कर, और दूसरी बार फिर से कहते हैं कस्तुसित धनम, अरे धन किसका है, लालच क्यों करता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो क्या मैं छोड़ करके चला जाऊं। कहते नहीं, तुझे छोड़ने की बात कहां कह रहे हैं कि संसार को छोड़ करके चला जा, ऐसा थोड़ी ही कहते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, देख ये तीन सूत्र यहां पर दे दिए गए। पहला सूत्र है, एक सूत्र जहां पर ईश्वर के द्वारा सब कुछ को ढांक लो, दूसरा सूत्र है सबके भीतर में ईश्वर को विराजित देखो, और तीसरा सूत्र है यह जो मैं सब कुछ को ईश्वर से ढांक लेता हूं या सबके भीतर में ईश्वर को विराजित देखता हूं, यही त्याग का भाव है। देखा आपने विलक्षण, कि मैं अभी मनुष्यों को देखता हूं और जब मैं ईश्वर से ढांक लूं तो मुझे क्या दिखेंगे। जैसे मुझसे कहा गया तुम इस माइक्रोफोन को इस कपड़े से ढांक करके देखो, तो कपड़े से ढांकने से कपड़ा दिखता है, माइक्रोफोन नहीं दिखाई देता। इसका मतलब जब मुझसे कहा गया कि तुम ईश्वर से ढांक करके जगत को देखो तो ईश्वर ही दिखाई देते हैं, यह एक। दूसरा, सबके हृदय को मानो सबके भीतर में भगवान को विराजित देखो, यह दूसरी दृष्टि है। एक ज्ञान की दृष्टि है, एक भक्ति की दृष्टि है। तो यहां पर मानो तीनों चीजों का समन्वय है, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का। कहते तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये जो भुंजीता शब्द है भोग करो या कर्म का प्रतीक है, तेन त्यक्तेन भोग करो माने हम संसार का भोग तो कर रहे हैं पर त्याग के द्वारा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लालच बढ़ता है और इसीलिए हम दुख और संकट में पड़ते हैं। तो भोग करने से मना नहीं किया जा रहा है, संसार का भोग करो पर उस त्याग के द्वारा, तेन त्यक्तेन, वह त्याग कौन सा है, यह जो अभी दिखाई देता है उसको तुम भगवान से ढांक लो, यह त्याग है। यह जो दिखाई देता है उसके भीतर में भगवान को बैठा हुआ देखो, यह त्याग है। चाहे ज्ञान की दृष्टि से त्याग, चाहे भक्ति की दृष्टि से त्याग, और कर्म करो यह कहा गया है। यही तो विलक्षणता है यहां पर, जगत्याम जगत, त्याग का पाठी सिखाया ना स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर को। आप जानते हैं रॉकफेलर के संबंध में, रॉकफेलर अमेरिका के कितने बड़े धनाढ्य, शिकागो में वे रहा करते थे। स्वामी विवेकानंद एक के यहां अतिथि थे, जिनके यहां अतिथि थे गृह स्वामी, मित्र थे रॉकफेलर के। गृह स्वामी ने कई बार कहा रॉकफेलर से, अरे जरा आओ भारतीय सन्यासियों को देख जाओ, कितना तहलका मचाया था इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, परंतु रॉकफेलर की कोई रुचि नहीं है। कहा कि मुझे यह सब नहीं देखना है, किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं मन में पैदा होता है। रॉकफेलर नहीं आए, पर एक दिन अचानक मालूम नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह वे अनअनाउंस्ड आते हैं बिना पूर्व सूचना के, दस्तक दी, बटलर ने दरवाजा खोला, पूछा वेल इज द स्वामी देयर, कहा कि जी हाँ, तो कहता है बटलर मैं उन्हें सूचना दे दूं, कहा नहीं यू टेक मी देयर, मुझे ले चलो। और बटलर ले जाता है, स्वामी जी अपनी स्टडी में हैं, कुर्सी में बैठे हैं, पत्र लिख रहे हैं, रॉकफेलर आए, स्वामी जी ने सिर तक नहीं उठाया। बड़ा खराब लगा रॉकफेलर को, इतना बड़ा आदमी और यह आदमी सिर तक उठा करके नहीं देखता है, ढोंग कर रहा है जैसे वह इतना तल्लीन है, मालूम ही नहीं पड़ा है आना, पर स्वामी जी वैसे ही कर रहे हैं। फिर रॉकफेलर ने बातचीत शुरू की, स्वामी जी बातचीत करते हैं, अंत में स्वामी जी ने रॉकफेलर के जीवन की ऐसी घटनाओं को बताना शुरू किया जो रॉकफेलर को छोड़कर के दूसरे किसी को पता नहीं था। रॉकफेलर बहुत अचंभे में पड़ा, कोई दूसरा आदमी नहीं जानता और इस सन्यासी को ये सारी बातें कैसे मालूम। सुनता रहा, स्वामी जी ने अपनी बात कही और अंत में कहा कि जो तुम्हारे पास इतना विपुल धन है, इतनी विपुल संपदा है, यह भगवान ने तुम्हें दी है, भगवान का न्यास है, यह ट्रस्ट है, यह ईश्वर का ट्रस्ट है, तुम्हें उन्होंने ट्रस्टी के रूप में, न्यासी के रूप में रखा है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, गरीबों की सेवा में इसे लगाना चाहिए, इसे तुम अपना धन नहीं मानना। रॉकफेलर को बहुत रोष आया, वह उपदेश सुनने के आदि नहीं थे, एकदम वे निकल गए, चले गए। जब मित्र को मालूम पड़ा, मित्र ने पूछा, मालूम पड़ा कि तुम आए थे, हाँ आया था, तो सन्यासी कैसे लगे, अरे क्या कैसे लगे, रॉकफेलर लगा रहे कुछ जादू जानता है ऐसा मुझे लगा, ये ठीक है पर कोई प्रभावित मैं नहीं हुआ, रॉकफेलर ने तो कह दिया। सात एक दिन के बाद रॉकफेलर फिर उसी प्रकार मंथन में पढ़ करके सुबह पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, बटलर खोलता है दरवाजा, मुझे ले जाओ उस सन्यासी के पास, अनअनाउंस्ड चले जाते हैं। और स्वामी जी के सामने एक कोई दस्तावेज था, जोरों से मेज पर पटक करके कहते हैं हियर टेक इट, नाउ यू शुड बी सेटिस्फाइड एंड थैंक मी फॉर दिस। स्वामी जी ने यूं देखा दस्तावेज को, कई लाख रुपए की राशि दान में किसी पारोपकारी संस्था के लिए दान में दी गई थी, उसका यह दस्तावेज था। स्वामी जी ने वह पढ़ा और फिर उसे देते हुए कहा रॉकफेलर से, इट इज फॉर यू टू थैंक मी, तुम मुझे धन्यवाद दो, मैंने तुम्हें दृष्टि दी है। तो यह जो कथा है तो ठीक यही, त्याग के द्वारा भोग करो, यह हमारा यह जो है धन मेरा है, मेरा कहाँ है, यदि किसी के पास संचित धन है, प्रभु का धन है, प्रभु ने मुझे न्यासी के रूप में रखा है, यह भाव तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इस त्याग के द्वारा भोग करो, भोग में कोई आपत्ति नहीं है, पर त्याग के द्वारा ईश्वर को बैठे हुए देखो, सब कुछ को भगवान से ढक करके देखो, गृद्ध किसी प्रकार का लालच मत करो। और दूसरे मंत्र में कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम समाह, एवं त्वय नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका अर्थ है कुर्वन्नेव इह कर्माणि, इस जीवन में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। क्या अद्भुत बात है, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, माने जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कर्म करता रहूं। इससे बढ़कर के कर्म पर जोर कहीं नहीं है, जो ईशावास्योपनिषद में दिया है, मरते दम तक मैं कर्म करते हुए जीने की इच्छा करूं। एवं त्वय नान्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इसको छोड़ करके कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य कर्म से न चिपके। मनुष्य कर्म क्यों नहीं करना चाहता, डरता है कि कर्म चिपक जाएंगे, मैं कर्मों में फंस जाऊंगा। तो यहां पर कहते हैं अरे तू नर है, तू नेतृत्व करने वाला नर है, तू चिपक नहीं सकता। अरे कर्म चिपकता नहीं, कर्म से क्यों डरता है, आसक्ति चिपकती है, आसक्ति के कारण कर्म चिपकता है, आसक्ति की गोंद लगाने से कर्म चिपकता है, कर्म अपने आप में नहीं चिपकता। तो कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, यह विलक्षण है। इसका मतलब कि हमारी जो आयु की सीमा बताई गई 100 वर्ष, हम लोग 100 वर्ष जीते थे ऐसा कहा गया है। जब आजादी हमें मिली तब हमारी औसत आयु थी 29 साल की, अभी हमारी औसत आयु हो गई है 54 साल की। बाहर अमेरिका इत्यादि देशों में 72 से 74 साल की आयु सीमा है औसत आयु, और रूस में औसत आयु है 58 साल की। रूस इतना प्रगतिशील होकर के भी 58 साल, क्यों, वहां पर वोदका के कारण, वोदका ये पीते हैं, शराब पीते हैं, उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक होती है, उससे आदमी नष्ट हो जाता है। तो रूस की सरकार इस पर विचार कर रही है, और आप पढ़ते हैं कि गोर्बाचोव ने जहां पर भी इस प्रकार पब्लिक मीटिंग्स हो या पब हो वहां पर वोदका की मनाही भी कर रहे हैं कि वोदका न पिए। वह कैंपेन चला हुआ है क्योंकि उस शराब के कारण मनुष्य खत्म हो जाता है। तो रूस में औसत आयु है 58, भारत में अभी 54, तो धीरे धीरे हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया 100 साल, हम 100 साल जीने की इच्छा करें। और एवं त्वय नान्यथा इतः अस्ति, कितना जोर दिया, यही एकमात्र तरीका है, इससे बढ़कर के, इससे छोड़कर के, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा तरीका नहीं है कि कर्म मनुष्य को न चिपके। अरे डरता क्यों है तू कर्म से, यह त्याग का भाव लेकर के, परमात्मा से सब कुछ को ढाक करके जीवन का भोग कर, कर्म करते हुए जा, सबके भीतर में ईश्वर को अवस्थित देख, फिर कर्म चिपकेंगे नहीं, 100 साल जीने की इच्छा कर। यह कर्म का सैकड़ा कहा जाता है हमारे यहां, जैसे 116 साल कर्म का सैकड़ा माना गया होता है ना, जैसे मंत्र का सैकड़ा 108 का, हम 100 कहेंगे मंत्र जाप तो 108 कहते हैं। रत्तल का सैकड़ा होता है 112 का, नींबू का सैकड़ा होता है 120। जैसे हम लोग गांव में या शहर में, पहले आजकल तो नहीं, पहले गांव में जब खरीदते थे या शहर में भी खरीदते थे, कहा कि 100 आम दे दो तो बराबर 120 गिन करके देता था, नींबू 100 दे दो तो 120, तो वैसे रत्तल 100 माने 112 का, तो यह जो है, तो उसी प्रकार 100 माने वर्ष आयु की दृष्टि से 116, उसमें यूं कहा गया 24 साल तक अध्ययन, 44 साल तक गृहस्थाश्रम, और उसके बाद जितना भी बाकी है या जो 48 साल का काल बचा हुआ है, इस काल में क्या करने का, इस काल में कहा गया कि ठीक, यह ध्यान उपासना यह सब इस ढंग से अपने जीवन को बिताओ, मानो जीवन का ऐसा विभाजन। तो कहते हैं 100 साल तक जीने की इच्छा करो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः, तुम गहरे अंधकार से भरे लोकों में जाओगे, तुम आत्म कहलाओगे, अपने आत्म तत्व का नाश कर लोगे, अगर तुम मेरी इन बातों को अनदेखा अनसुना कर दोगे। तो पहले मंत्र में सिद्धांत, दूसरे मंत्र में सिद्धांत का व्यवहार, ऐसा अद्भुत यह उपनिषद। कल हम देखेंगे, यहां पर मंत्रों पर चर्चा करेंगे, ये आत्म तत्व का स्वरूप हमारे समक्ष रखते हैं कि मैं आत्मघाती बनूंगा, किस आत्म तत्व का मैं विनाश करूंगा। यदि मैं इन दो मंत्रों को नहीं सुनता हूं, सिद्धांत और व्यवहार, या जिसको हम कहेंगे विचार और आचार, ऐसा जो रखा गया, यदि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आत्मघाती बनूंगा। तो वह आत्मा क्या है जिसका मैं घात करता हूं, उसका वर्णन और विवरण हम कल देखेंगे। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद।